मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे निबंध की भाषा इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। एक अखबारों में आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 162 के बारे में। इनफैक्ट अनुच्छेद 162 के संदर्भ में उसका आधार लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय सुनाया है, इसलिए मैंने अनुच्छेद 162 की चर्चा यहां विशेष रूप से की है, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उस पर यदि प्री में कोई प्रश्न पूछा गया तो अनुच्छेद 162 ही पूछा जाएगा, घटना के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि देश में अभी समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की खूब बातें हो रही हैं। यहां तक कि दो राज्यों ने तो अपने यहां समान सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटियों का भी गठन कर दिया है। ये जो दो राज्य हैं, जानते हैं आप, उत्तराखंड और गुजरात, राइट। यहां कमेटियां बन गई हैं। जब इन राज्यों ने कमेटियां बनाई तो इसी के अगेंस्ट में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें यह कहा गया कि नहीं, राज्यों को यह कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे संविधान के अनुच्छेद का जो 44वां है उसमें लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता बनाई जाए। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो समान नागरिक संहिता बनाई जानी है ये पूरे देश के नागरिकों के लिए बनाई जानी है, किसी राज्य के लिए नहीं। और गुजरात और उत्तराखंड देश के लिए तो बना नहीं सकते, वो अपने राज्यों के लिए बना रहे हैं, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे इस पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, राज्यों को अनुच्छेद 162 के तहत ऐसा अधिकार है कि वे बकायदे इस पर कमेटी गठित कर सकते हैं और यहां तक कानून भी बना सकते हैं। बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राज्य हैं शादी के बारे में कानून बनाते हैं, तलाक के बारे में बनाते हैं, गोद लेने के बारे में बनाते हैं, उत्तराधिकारी के बारे में बनाते हैं, वसीयत आदि के बारे में बनाते हैं, तो फिर इसके बारे में क्यों नहीं बना सकते? 162 साफ तौर पर कहता है कि राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। किसके बारे में शक्ति है? जो राज्य सूची के विषय हैं, खत्म हो गई बात। और इसके बाद यही जो अनुच्छेद कहता है, लेकिन जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 162 आपको मालूम होना चाहिए, इसे मन ही मन आप दोहरा लें। मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, जिसमें बताया गया है कि बाजरा केवल बाजरा नहीं है, ये बहुत कुछ है, ये केवल नारा बनकर न रह जाए। इसे आप जरूर पढ़िएगा, मोटे अनाज से संबंधित है। इसमें दो तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, इसमें बताया गया है कि जो बाजरे की खेती है वो किसान क्यों करे, क्योंकि इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो गेहूं से आधा होता है, चावल की तुलना में 40% होता है और इसकी कीमत भी कम है, तो ऐसे में कोई बाजरा क्यों लगाएगा, पहला प्रश्न उठाया। दूसरा, इसमें एक बात कही गई है और मुझे लगता है कि ये आपके दिमाग में दर्ज भी हो जानी चाहिए कि हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाजरे की एक हाइब्रिड किस्म विकसित की है, उसका नाम है पूसा 1201, पूसा 1201। ये जो है ये रोग विरोधी है, फंगस निरोधी है और गेहूं से इसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए पूसा 1201, क्योंकि प्री में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके फ्रंट पेज पर ही आपको एक न्यूज पढ़ने को मिली है, और देखिए जब फ्रंट पेज पर कोई न्यूज आ जाती है तो उसे अपेक्षाकृत आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट मानकर चलना चाहिए। एक न्यूज जो मुझे अखबार के फ्रंट पेज पर पढ़ने को मिली वो ब्राजील की न्यूज है। ब्राजील में क्या हुआ? ब्राजील की चर्चा हम लोगों ने की थी, आपको ध्यान होगा कि ब्राजील में बकायदे नए राष्ट्रपति ने शपथ ली, और जब उन्होंने शपथ ले ली तो जो पराजित होने वाले राष्ट्रपति थे उनके समर्थकों ने अब उत्पात मचाया, बैरिकेड तोड़ करके बकायदे वो राष्ट्रपति भवन में घुस गए, संसद में घुस गए और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और 6 घंटे तक वो हंगामा मचाते रहे। ये घटना हुई है, ये ब्राजील में हुई है। ये जो समर्थक थे ये बोलसोनारो के समर्थक थे, और बोलसोनारो का ये कहना है कि अभी जो राष्ट्रपति बने हैं डा सिल्वा, वो गलत तरीके से बने हैं, चुनाव में उन्होंने हेरा फेरी की है, ये आरोप लगाते हैं। अब जान चुके हैं कि जो पराजित राष्ट्रपति हैं अभी वो अपने देश में नहीं है, अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही चिंतनीय घटना है, और आप देखिए कि कितनी चिंतनीय घटना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी चिंता जताई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र को सभी का सम्मान करना चाहिए, और ब्राजील में अभी जो सरकार है उन्हें हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि कैसे ब्राजील और भारत के संबंध बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपको ध्यान होगा कि इसी तरह की घटना अमेरिका में भी तब हुई थी जब ट्रंप पराजित हुए थे और बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, ये 2021 की घटना है। उस समय ट्रंप के जो समर्थक थे वो बकायदे अमेरिका के संसद भवन में घुस गए थे। अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है, जब इसकी जांच पड़ताल हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ट्रंप को इसका दोषी माना गया है कि नहीं, ट्रंप ने अपने समर्थकों को इसके लिए भड़काया था। दोस्तों ये ब्राजील की घटना है, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि प्री में इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दो घटनाएं अभी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ईरान में हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, और दूसरा ब्राजील की भी ये घटना इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे यहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में आपको खबरें पढ़ने को मिलती होंगी, आप पढ़ते रहें, देखते रहें क्या उसमें से विशेष निकल करके आता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कुछ विशेष उसमें से निकल करके आएगा, सिवाय इसके कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अखबार में मुझे खासकर भारतीय नागरिकता को लेकर के कुछ बहुत अच्छे तथ्य पढ़ने को मिले, तो मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। तथ्य थोड़े से चिंता पैदा करने वाले हैं। वो तथ्य यह है कि भारत से हर साल लगभग 180 लाख लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, मतलब भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और बाहर जाकर के बस रहे हैं। बाहर जाकर के बसने वालों में सबसे ज्यादा जो पसंदीदा देश है वो है अमेरिका। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, फिर वो क्यों जा रहे हैं? ये माना जा रहा है कि वे खासकर इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अपराध की दर बढ़ रही है, आप कह लीजिए, या फिर अब अपने देश में बहुत ज्यादा काम करने की या व्यवसाय की गुंजाइश नहीं रह गई। ठीक है, चलिए, वो तो अब अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपके दिमाग में दर्ज रहना चाहिए। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, वो है निबंध की भाषा। आप सोच रहे होंगे कि इसका करंट अफेयर से क्या संबंध है। दोस्तों इसका संबंध है, मैं आपको एक छोटा सा अंश पढ़कर सुना रहा हूं जो मुझे एक अखबार में आज मिले और मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने इसे अपने आज के मुख्य विषय में शामिल कर लिया। देखिए भाषा सुनिए, लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। गौर कीजिएगा, भाषा पर ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी अपनी विरासत को समेटे रखता है। इंदौर ने स्वच्छता में तो अपनी अलग पहचान साबित की ही है, खाने पीने के लिए भी अपना इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौर के नमकीन का स्वाद, पोहा का पैशन, साबूदाने की खिचड़ी, कचौड़ी, समोसे, शिकंजी, जिसने देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका, और जिसने चखा फिर उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता की राजधानी कहते हैं, लेकिन यह स्वाद की राजधानी भी है। मुझे विश्वास है कि यहां के अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों ये शब्द है हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो उन्होंने इंदौर में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहे थे। आपको कुछ भाषा में भी एक स्वाद का अनुभव हुआ? गौर कीजिए, स्वाद का अनुभव, और अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो प्लीज इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। भाषा में एक स्वाद होता है, भाषा का एक लालित्य होता है। आप पढ़ गद्य रहे होते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, ये इसकी भाषा है जो मैंने अभी आपको सुनाई, हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा है। दोस्तों, आपके निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए। आप देखिए कि इसमें तथ्य भी हैं, वो बकायदे बात करते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, पोहा की बात करते हैं, नमकीन की बात करते हैं, कचौड़ी और समोसे और शिकंजी की बात करते हैं। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, लेकिन वे उसे प्रस्तुत किस रूप में करते हैं ये गौर करने की बात है, ये ध्यान देने की बात है। आपके निबंध की भाषा इसी तरह की होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को बिल्कुल पकड़ ले। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप सब निबंध की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज, जब तक आप अपनी भाषा पर काम नहीं करेंगे तब तक निबंध की तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए बीच बीच में मैं आप लोगों को याद भी दिलाता रहता हूं कि कुछ अच्छे गद्य, अच्छे लोगों के भाषण, जिनमें प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष रूप से उल्लेख करता हूं, आपको सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, तथ्यों के लिए नहीं, भाषा के लिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो 26 अक्टूबर से शुरू होंगी और 9 नवंबर को समाप्त होंगी, उसके लिए समर भास्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो समर भास्कर, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं गुंजा कुमारी और दीक्षा मेघवाल उदयपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।